கொஞ்ச விஹாரி ராதா மாதவ ஜய ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ராதா மாதவ ராதா மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ராதா ஜய கோபிகண வல்லப ஜய கிரிவரதாரி கோபிகண ஜய யசோதானந்தன ஜய சதாஜனரங்கன யசோதானந்தன ஜய யசோதானந்தன ஜய பிரஜனரஞ்சன ஜய சோதானந்தன ஜய பிரஜனரஞ்சன ஜய யமுனா தீராவன சாரி ஜய குஞ்ச விஹாரி யமுனா தீராவன மாதவ ஜய குஞ்ச விஹாரி ராதா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி 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 கிருஷ்ண ஹரி ராம ஹரி ராம ஹரி கிருஷ்ண ஹரி கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி 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 ராம Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vajajana Randana Yamuna Piravana Kari. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Radha Kunja Vihari Ki, Shri Shri Gaurita Ki, Shri Na Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Nitai Gaura Premanandi. श्री रूप मंजरी पाला ये मेरा अंतरा श्री रूप मंजरी पाला ये मेरा पदा
Thank you. అవయతరుణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్, ఆల్ గ్లోరీస్, ఆల్ గ్లోరీస్, ఆల్ గ్లోరీస్ శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌరంగ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతం ఫస్ట్ క్యాంటో ఫస్ట్ చాప్టర్ టెక్స్ట్ నెంబర్ 8. వేత్తత్వం సౌమ్యతత్ సర్వం తత్వతస్తద్ అనుగ్రహాత్ భూయు స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యమపి యుత. ఫర్ సబ్మిసివ్ యువర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ హ్యావ్ ఎండోర్డ్ యూ విత్ ఆల్ ద ఫేవర్స్ బెస్టోడ్ అపాన్ అ జెంటల్ డిసైపుల్. దేర్ఫోర్ యూ కెన్ టెల్ అస్ ఆల్ దట్ యు హ్యావ్ సైంటిఫికలీ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దెమ్. పర్పోర్ట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఎస్సీ భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాద శ్రీ ప్రభుపాదకి. The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanzas on the spiritual master as follows. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead. And when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Suta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters, such as Srila Vyasadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Suta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him.
Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuhuvan Melitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha.
आप सबको रविवार के सत्र में स्वागत करते हैं. आज श्रील रूप गोस्वामी पाद का 13वां दिन है, इसलिए मैं सोच रहा था भागवत के किस श्लोक को लिया जाए रूप गोस्वामी की गुणगान करने के लिए, तो तुरंत मुझे बहुत समय सोचने के बाद क्लास के एक मिनट के पहले ही श्लोक याद आया मुझे, इसलिए हम लिख नहीं पाए बोर्ड में। तो ये श्लोक परमात्मा अंदर से कुछ प्रेरणा देते हैं लास्ट मिनट में। ये श्लोक क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस श्लोक में शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी की गुणगान करते हैं। वो बताते हैं, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। स्निग्धस्य का मतलब है जो नम्र, शिष्यस्य मतलब शिष्य, गुरवः का मतलब है अनेक गुरु वर्ग के लोग, गुह्यम अप्युत वही मतलब है बहुत गुह्य ज्ञान जो है उसको आपके ऊपर प्रदान किया है, सब गुरुओं ने आपके ऊपर आशीर्वाद किया है, इसलिए बताते हैं। वेत्तत्वम सौम्यम सौम्य तत्सर्व, आपको वैदिक ग्रंथ वगैरह बहुत अच्छी तरह मालूम है। सौम्य का मतलब है जो बहुत शुद्ध और सरल, वो सौम्य है, आप शुद्ध और सरल हैं। तत्सर्वम वेत्तत्वम सौम्य तत्सर्वम, आपको सब कुछ वैदिक ग्रंथ ज्ञान है आपके पास। तत्व तत्वत तद अनुग्रहात, क्योंकि आपको कृपा प्राप्त हुआ है ये सब गुरुओं की, ऐसे बताते हैं। तो इसके संबंध में रूप गोस्वामी के जीवन में भी एक घटना घटी है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। जिस तरह इधर बताया गया है वैदिक ग्रंथों के, वैदिक ग्रंथों को, वैदिक ग्रंथों के दिव्य ज्ञान को पचन करना आसान काम नहीं है। क्योंकि क्यों मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया पचन करने का, क्योंकि वैदिक ग्रंथों को जानकर दूसरों को बताना बहुत आसान है, लेकिन वैदिक ग्रंथों को वैदिक ग्रंथों में जो दिया हुआ दिव्य ज्ञान है उसके साक्षात्कार करना और अपने जीवन में लागू करना, वो किसके हाथ में है, वो गुरुओं के आशीर्वाद के ऊपर है, इस तरह बताया है इधर। तो वैदिक ग्रंथ तो समुद्र के समान है, उसको जितना भी पढ़े, अनेक लोग भारत में इतने प्रवचनकार हैं, लाखों लोग आते हैं उनके प्रवचनों में है, तो वैदिक ग्रंथ को याद रखकर दोहराना, नहीं तो ये संस्कृत श्लोकों को मनन करके दूसरों को बताना ये बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको संस्कृत की पांडित्यता की जरूरत है। जैसे कोई आए थे प्रभुपाद के पास, बोले कि प्रभुपाद जी ये शिष्य जो है आपके शिष्य है इसको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक याद है, और आप किसी भी श्लोक का पहले का शब्द बोलिए नहीं तो लास्ट शब्द बोलिए ये तुरंत श्लोक बोल देगा, वह इतने याद है इसको, तो इसलिए आपके सामने लाया है इसको आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है अंदर लेके जाकर कुछ सेवा दे दो उसको, बोला प्रभुपाद ने, आस्क हिम टू डू सम मीनिंगफुल सर्विस, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। क्यों, क्योंकि इस तरह दूसरे ये घटना घटी प्रभुपाद के जीवन में। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एक श्लोक का अनुवाद की थी, तो एक पंडित आए थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को ये शब्द का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो प्रभुपाद ने मीनिंग बताया। प्रभुपाद क्या करते थे, कभी कभी आप देखेंगे प्रभुपाद जी भागवत में ईश्वरोपनिषद में लिखते समय अगर पुरुषोत्तम शब्द लिखा है तो प्रभुपाद उसके बदले लिखेंगे कृष्ण, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पुरुषोत्तम कोई और नहीं है, कृष्ण ही है। तो वो आदमी पूछने लगा प्रभुपाद जी को, नहीं नहीं
आप मुझे इसका एग्जैक्ट संस्कृत मीनिंग बताइए, ये संस्कृत का मतलब क्या हो बताइए। तो प्रभा ने बोला उसके लिए तो तुम संस्कृत पंडित के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए। आचार्य के पास तब आना चाहिए जब तुम शास्त्र के असली मतलब जानना चाहते हो, तभी। अगर सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन चाहिए आपको, उसके लिए एक संस्कृत पंडित को लगा सकते हैं, वो बोल देगा आपको हर एक शब्द का लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, वो बोल देगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्र के मर्म जो है, गूढ़ता मर्मता, इसको समझना पांडित्यता के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन शरणागति के ऊपर निर्भर है। शिष्य के शरणागति और गुरु के आशीर्वाद और गुरुओं के आशीर्वाद, उसके ऊपर निर्भर है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। क्योंकि जैसे वो गीत में गाते हैं, असत्य रे सत्य कोरी मानी, असत्य को सत्य मानकर अविद्या में विलिप्त होकर या जो बद्ध जीवात्मा है इस दुनिया में भटक रहा है, इसलिए ऐसे जीवात्मा को जागृत करना सिर्फ कुछ पांडित्यता से नहीं होगा, सिर्फ शास्त्र पठन से नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा वो, उसके लिए परम कृपा एक शिष्य के ऊपर आना चाहिए, महात कृपा, तभी वो जागृत होगा वो शिष्य। लेकिन वो कृपा को श्री रूप गोस्वामी ने कैसे प्राप्त की, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी पाद भी ऐसे ही महान वैष्णव, जैसे इधर गुणगान किया जा रहा है सूत गोस्वामी के बारे में, ऐसे ही रूप गोस्वामी पाद हमारे लिए बहुत मुख्य आचार्य हैं। क्योंकि भगवत धाम में सब सारे मंजूरियों में, मंजूरियों के लीडर जो है वो रूप गोस्वामी है, श्री रूप गोस्वामी। भगवत धाम में मंजूरी जो होते हैं उनका स्पेशलिटी क्या है, उनका विशेष क्या है, आप पढ़ेंगे शास्त्र में बताया है कि राधा कृष्ण जो होते हैं उनकी सेवा करने वाले अनेक सखियां होती हैं, जैसे ललिता विशाखा उनमें से बहुत मुख्य सखियां हैं, और उनके बाद दूसरे अष्ट सखी आपने देखा है, अष्ट सखी मायापुर में देखा हमने, वो परम प्रेष्ठ सखी बोलते हैं उनको, और कुछ राधा स्नेहादिका सखी हैं, कृष्ण स्नेहादिका सखी हैं, जो राधा को ज्यादा प्रेम करते हैं, कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं, प्राण सखी, नित्य सखी, ऐसे अनेक तरह के सखियां हैं। लेकिन इन सखियों के बाद मंत्री जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, जैसे सात उम्र के, छह सात उम्र के होते हैं मंजरियां। तो जैसे पेड़ में आप देखेंगे मंजरी बोलते हैं उसको, फूल पूरे उगने के पहले जो होता है उसको मंजरी बोलते हैं उसको, है ना, बहुत छोटे छोटे, ये जो एक पीला रंग का एक फूल होता है उसको मंजरी बोलते हैं उसको, छोटा। तो ये मंजरियां राधा कृष्ण की सेवा में जब लगती हैं, जैसे चामर दुलाती है, नहीं तो कभी कभी तांबूल लाती है भगवान को, इस तरह राधा कृष्ण की लीला में सखियां सब चले जाते हैं लेकिन मंजरी रहती हैं उधर, इसलिए मंजरियों को कभी कभी सखियों से भी ज्यादा प्रधानता दिया गया है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि सखियां बड़ी होती हैं लेकिन मंजरियां छोटी होती हैं, इसलिए मंजरियों को अनुमति है जिधर सखियों को अनुमति नहीं है, ऐसे। तो ये मंजरियों के नेता कौन है, श्री रूप गोस्वामी, तो रूप मंजरी उनका नाम है उधर, तो रूप मंजरी इधर रूप गोस्वामी के रूप में आते हैं इस दुनिया में। हालांकि उनका जन्म हुआ सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, भारद्वाज गोत्र में, रूप गोस्वामी पाद ऐसे जन्म लेकर लीला की है इस दुनिया में, फिर भी हमें उनको श्री रूप मंजरी के रूप में देखना चाहिए। जिस तरह इस गीत हमने जो गाया, श्री रूप मंजरी पदा सही मोर संपदा, यही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है, रूप मंजरी के पद कमलों में रहकर सिर्फ उनके आदेशानुसार सेवा करना। तो प्रभुपाद जी उपदेशामृत के शुरुआत में लिखते हैं कि हम सब रूपानुग हैं, रूपानुग मतलब है रूप अनुग, तद अनुराग जन अनुगामी कालम नये दखिलम इत्युपदेश सारम, किसी महान वैष्णव के हमें अनुगामी बनना चाहिए, हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हम किसके अनुगामी हैं, रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, और हम रूपानुग भी हैं, प्रभुपाद अनुग भी हैं, हम उनके पदचिन्हों में हम चलने वाले हैं। तो रूप गोस्वामी की जीवन चरित्र बहुत विशाल है, हम पूरा नहीं बता पाएंगे आज के छोटे क्लास में। फिर भी मैंने सोचा कुछ खास उनके जीवन में से हम विषयों के लेंगे। एक्चुअली मैंने आज दूसरे विषय के संबंध में बोलने की इच्छा की थी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि आज रूप गोस्वामी के तिरुभावजन है, इसलिए मैं रूप गोस्वामी के बारे में कुछ समय बताऊंगा। लेकिन जिस विषय के बारे में मैं बोलना चाहता था, शायद लास्ट आधा घंटा पौने घंटा हम बोलने के लिए प्रयत्न करेंगे उसके ऊपर। तो रूप सनातन ये चैतन्य महाप्रभु को मिलने के पहले से लेकर ये कृष्ण के महान भक्त थे। ये नवाब हुसैन शाह राजा के महल में उन्होंने इनको प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऐसे बनाया था उन्होंने, ये दोनों को, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को। उन दिनों में अगर एक मुगल राजा किसी को पदवी देता है, उनको मुसलमान के रूप में स्वीकार करके उनको नाम देता है, वो हमारी दीक्षा के समान है उनके कम्युनिटी में, क्योंकि मुसलमान लोग दूसरे जाति के लोगों को परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनको सब उनके बड़े कोर्ट में स्वीकार करके उनको टाइटल जैसे सकार मल्लिक दबीर काज ऐसे नाम दिया था उन्होंने, ये बहुत सम्मान की बात माना जाता है उन दिनों में। तो ऐसे रूप सनातन जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे, वो क्यों अपने ब्राह्मणत्व को छोड़कर ऐसे एक राजा के सभा में मुसलमान बने? क्या पैसे की लालची के लिए किया ऐसा उन्होंने? क्या कुछ पदवी मान सम्मान यश प्राप्त करने के लिए किया उन्होंने? ऐसे ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उन दिनों में भारत मुगल मुसलमान लोगों की चंगुल में था। तो उस समय नवाब हुसैन शाह को पता चला उसके छोटे मोटे मिनिस्टर लोगों से कि ये ब्राह्मणों के समूह में ये दो बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। ये उस समय उनका नाम दूसरा था, जैसे संतोष ऐसा कुछ नाम था उनका। ये दो लोग रूप सनातन ये बड़े लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत निपुण हैं और ये मिनिस्टर बन सकते हैं और आपके सारे राज्य का बोझ अपने कंधे पर उठा लेंगे, आपको चिंता नहीं, बुलाइए उनको। तो ऐसे रूप सनातन वो एक मुगल राजा के पास, एक मलेच्छ जो गोमांस खाने वाले के पास क्यों काम करेंगे वो? फिर भी उन्होंने जब गए तो राजा को, क्योंकि राजा की आदेश मना नहीं कर सकते, तो राजा ने बोला कि देखो मैं आपके हिंदू समूह को मैं कुछ तकलीफ नहीं दूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ काम करोगे। आप नहीं करोगे, मेरे मिनिस्टर नहीं बनोगे तो मैं हिंदू समूह को, हम मंदिरों को तोड़ेंगे, ये सब करेंगे इस तरह। तो इसलिए रूप सनातन ने ये पदवी स्वीकारी उनके सभा में। फिर भी वो राजा नवाब हुसैन शाह ने सोचा कि इनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे परिवार से आए हैं और बहुत समय मेरे साथ काम करना चाहिए, इसलिए उनको खुश रखना चाहिए, इसलिए उनको बहुत स्वतंत्रता दिया था उसने। उनको भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट दिया, बड़ा बड़ा महल बनाओ, उन्होंने महल बनाया बड़ा, उनमें से उनको एक एक महल दे दिया दोनों को। ऐसे जिस तरह उनका महल बड़ा था राजा का, ऐसे ही महल था रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का। हम देखने के लिए गए थे एक बार, आजकल भी है, देख सकते हैं आप, उनका बड़ा महल है। तो ऐसे जब वो रहते थे उनके ही उसी शहर में, ये रूप सनातन ने एक गुप्त वृंदावन बनाया था उन्होंने, गुप्त वृंदावन, क्योंकि ये भागवत पढ़ते थे पहले, ये विद्या वचस्पति नाम के ये सर्वम भट्टाचार्य के भाई थे, वो इनके गुरु थे रूप सनातन के, तो उनसे उनको प्रेरणा मिली थी श्रीमद भागवत के ऊपर। तो भागवत पढ़ते थे, कृष्ण के बारे में स्मरण करते थे सदा। तो कृष्ण के विरह में आकर एक समय उन्होंने निर्णय ली कि हम ऐसे ही एक गुप्त वृंदावन बनाएंगे जो वृंदावन में रहने के समान है। तो उनके शहर में ऐसे बड़ा गार्डन बनाया था, वृंदावन गार्डन उन्होंने। उस बगीचे में राधा कुंड था, श्याम कुंड था, कदम्ब वन था, गोवर्धन बनाया था उन्होंने ऐसे है। और इतने जाड़ थे, इतने पेड़ थे, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको मानो लगेगा कि हम वृंदावन में आ गए हैं ऐसे। तो उधर उन्होंने एक मदन मोहन का भी एक मंदिर बनाया था, मदन मोहन नाम का एक विग्रह को भी स्थापन की थी उन्होंने। अक्सर उधर जाते थे रूप सनातन, उधर जाकर रहते थे, भगवान का स्मरण करते थे और रोते थे इस तरह। तो उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने खत लिखा उनको कि हम इस राज पदवी को त्याग कर हम आपके पास आना चाहते हैं, आपका शरण लेना चाहते हैं, आप कृपया आदेश दीजिए, हम आ जाएंगे आपके पास। तो एक दो तीन ऐसे अनेक लेटर लिखा उन्होंने, कुछ जवाब वापस नहीं आया। तो कुछ समय के बाद एक लेटर आया था महाप्रभु से, चेत महाप्रभु से, उसमें उन्होंने लिखा था कि आप सदा जैसे महाप्रभु ने आदेश दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, बाहरी दृष्टि से तुम बिजनेस करो लेकिन हृदय में तुम भगवान कृष्ण की हमेशा स्मरण करो। जैसे हम लोग हैं इस दुनिया में, हमें इस भौतिक दुनिया के अनेक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, कंपनी में काम करना पड़ता है अनेक लोगों को, हालांकि उनको कंपनी में काम करना करने में उतना रुचि नहीं मिलता है, फिर भी आपको काम करना पड़ता है कंपनी में, क्योंकि आपको कमाना है, परिवार को चलाना है, इस दुनिया में अनेक जिम्मेदारी है आपको। तो कंपनी में कैसे काम करना चाहिए, इतना अच्छी तरह काम करना चाहिए कि आपको यात्रा जाने के लिए वो छुट्टी देने के लिए मना नहीं करेंगे आपको, इतना अच्छा काम करना चाहिए। अगर आपके बॉस सोचेगा कि ये इतना सज्जन है, इतना ईमानदार है अपनी नौकरी करने में, तो एक हमारे भक्त हैं, उन्होंने क्या किया, यात्रा के 4 महीने पहले बोल दिया अपने बॉस को, मैं नवंबर में यात्रा में जाने वाला हूँ 15 दिन, इसलिए मैं हर शनिवार को भी आऊंगा, आप मुझे ले लीजिए, मैं काम करता हूँ, लेकिन आप छुट्टी के लिए मना मत करिए। तो उनके बॉस इतने खुश हो गए, उन्होंने 4 शनिवार में काम पूरा कर लिया, उनसे बोला कि आगे तुमको शनिवार को भी आना नहीं है और यात्रा में भी जा सकते हो आप, ऐसा बोला। तो ऐसे ही बोला चैतन्य महाप्रभु ने उनको कि क्या करो, तुम्हारी भौतिक जो जिम्मेदारी है उसको भी निभाओ, लेकिन हृदय में सदा कृष्ण का स्मरण करते रहो, कृष्ण का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे खत लिखकर भेज दिया उन्होंने। तो इस तरह रूप सनातन बहुत बड़े ऐशोराम के बीच में रहते थे। नवाबुद्दीन शाह ने ऐसे एक विधि बनाई थी कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित कुछ भी किताब लिखेगा उसको छापा नहीं जा सकता है जब तक रूप सनातन उसको अप्रूवल नहीं करते थे, उनको अप्रूव करने के बाद ही छाप सकते थे, ऐसा शर्त था उनके दिनों में। और सारे भारत के पंडित लोग, न्याय शास्त्र के लोग सब आते थे नवाबुद्दीन शाह के दरबार में, तो रूप सनातन उनके लिए गेस्ट हाउस बनाते थे, उनको गंगा के तट में उनको व्यवस्था करते थे रहने के लिए, वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग सब आते थे, शास्त्र की चर्चा भी होती थी। तो रूप सनातन इस तरह ऐसे पदवी में थे, सब लोग ऐसे बताते हैं, बताया गया शास्त्र में कि वो जैसे इंद्र के समान थे, वो जिस तरह इंद्र एक ऊंचे आसन में बैठकर सारे सभा को चलाता है, इस तरह रूप सनातन थे। नवाबुद्दीन शाह एक भी काम नहीं करता था उनको पूछे बिना, अपने भाई के समान उनके साथ ट्रीटमेंट करता था वो ऐसे, और उनको बहुत फ्रीडम देता था अपने धर्म को पालन करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग पूरे डेडिकेटेड हैं, शरणागत हैं उनके राज्य को चलाने में ऐसे। तो रूप सनातन ऐसे बताया जाता है कि हालांकि उनका पदवी इतना बड़ा पदवी था, लेकिन वो बहुत नम्र थे, उनके तनिक भी अहंकार नहीं था, मिथ्या अहंकार नहीं था उनको, ऐसे बताया जाता है। तो जब बड़े बड़े वैष्णव आते थे वो अपने आसन से नीचे उतर कर सर झुकते थे, उनको उनको स्वागत करते थे, उनको प्रसाद परोसते थे, मीठे पीठे बात करते थे उनके साथ, ऐसे बहुत नम्र थे वो। और हालांकि बाहरी दृष्टि से वो नौकरी ऐसे करते थे, लेकिन कृष्ण के स्मरण में ही डूबे थे हमेशा। तो ऐसे रामकेली में नवाबुद्दीन शाह ने अपने कैपिटल बनाई थी उन दिनों में, उधर ही रहता था वो, और रूप सनातन भी उधर ही रहते थे। तो हम जब यात्रा में गए थे उधर ही हमने देखा महल वगैरह रूप और सनातन का, वो तो बहुत आजकल टूट फूट गए हैं, लेकिन फिर भी आजकल भी है महल, आप देख सकते हैं। तो एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु रामकेले में आए थे, जब वो वृंदावन जाने वाले थे, वृंदावन उतर नवद्वीप धाम से जो कोलद्वीप है उधर जाकर जब वृंदावन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, बहुत बहुत सारे हजारों लाखों लोग उनके साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। जिधर भी महाप्रभु गए उधर सब लोग आने लगे उनके साथ साथ। और उधर से लेकर एक डिटूर, डिटूर का मतलब साइड में लेकर महाप्रभु गए किधर, राम खेले गए। क्यों राम खेले गए? क्योंकि महाप्रभु को मालूम है सबके हृदय के बारे में, किसके मन में क्या इच्छा है। तो रूप सनातन की इच्छा तीव्र हो गई थी, महाप्रभु उनको मिलने के लिए, उनको शांतवना करने के लिए राम के लिए गए। तो राम के लिए में जब महाप्रभु आ पहुंचे हजारों लाखों लोगों के साथ, इतना जोरदार सब लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग ऐसे हाथ ऊपर करके नाचते हुए गाते हुए भाग ले रहे थे कीर्तन में। और महाप्रभु का कीर्तन इतना जोर से चल रहा था, राम के लिए सब जनता सब लोग आ गए उधर देखने के लिए, मुसलमान हो हिंदू हो कोई भी हो सब आ गए उधर वो कीर्तन को देखने के लिए। तो एक पुलिसमैन था, मुसलमान के पुलिसमैन, वो इसको देखकर गया वापस चैतन्य महाप्रभु के पास, जाकर बोला, हे राजा, आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा कि ऐसे एक संत महात्मा आए हैं आपके राज्य में, उनका शरीर इतना सुंदर है, उनका रंग सुनहरा है, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान है, और उनकी आंखों से ऐसे आंसू बह रही है मानो नदी बह रहा हो, और उनके मुंह से इतना मधुर कीर्तन निकल रहा है, और कीर्तन करते हुए वो बहुत सुंदर तरीके से नाचते हैं, और उसको देखकर मुसलमान हो हिंदू हो सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। जब ऐसे वो गाते हैं नाचते हैं, इतना ऊंचे कूदते हैं, ऊंचे होकर कूदते हैं, जब कूद कर नीचे गिरते हैं लगता है कि उनके सारे हड्डी टूट गया होगा लेकिन हड्डी टूटता नहीं, लेकिन जमीन में जो पत्थर है वो चूर चूर होकर वो टूट जाता है, लेकिन वो वापस उठकर वो ऐसे नाचते हैं, गाते हैं, सबको नचाते हैं, और सब लोग गाते हैं उनके पीछे, और सबके आंखों में आंसू है। इस तरह प्रेम विभोर होकर भगवान का नाम लेते हुए ये संत महात्मा ऐसे नाच रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में अभी तक मैंने किसी बाबा, किसी मुल्ला, किसी संत, किसी बड़े फकीर को मैंने देखा नहीं है जो जिनके अंदर भगवान के लिए इतना प्रेम है, और इतना भगवान को सोच सोच कर रोने वाला व्यक्ति है, मैंने देखा नहीं अभी। और मैंने कैसे किसी संत को नहीं देखा है जिनके अंदर इतना शक्ति है, और इतने लोगों को आकर्षित करने के लिए, और इतना सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखा है। इस तरह आकर पुलिसमैन ने बोला राजा को। तो राजा इसको सुनकर केशव खान नाम के एक व्यक्ति था, असिस्टेंट था उनके पास, उनको पूछा, ये केशव खान देखिए ये सब लोग, केशव खान भी वो हिंदू लोग हैं, लेकिन राजा ने उनको पकड़कर मिनिस्टर बनाया है, जैसे रूप सनातन को बनाया था ऐसे। तो उनको पूछा उन्होंने, ये जो संत महात्मा के बारे में बोल रहा है ये कौन है, मुझे जरा बताओ। उन्होंने बोला कि देखिए ये तो एक कोई ये भिकमंगा है, ये तो अलग अलग प्रदेश में घूमता है, लोगों से भिक्षा मांगता है, ये एक छोटा सन्यासी है, इसके बारे में आप ज्यादा सोचना मत, अब भूल जाइए, ऐसे बोला। केशवगन को अच्छी तरह मालूम था चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर भी उन्होंने ऐसे बोला। क्यों? उन्होंने सोचा कि राजा का दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो जाएगा तो हिंदू लोगों को सताएगा। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या बोला, ये तो छोटा मोटा भिकमंगा है, आप चिंता मत करिए, ऐसे बोला उसने। तो राजा ने जब सुना बोला, देखो जो भगवान को हम अल्लाह बोलते हैं, जो भगवान को हिंदू लोग कृष्ण बोलते हैं, वही भगवान अभी हमारे राज्य में एक संत के महात्मा के रूप में आए हैं, और वो इस तरह भगवान का नाम लेकर कीर्तन कर रहे हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो छोटा भिकमंगा है, ये बड़ा अपराध है, ऐसे बोला उसने। और बोला कि देखो तुम जाकर आदेश दो सब प्रजा को, कोई भी काजी, कोई भी पुलिस और कोई भी नेता अगर ये संत महात्मा को तकलीफ देगा तो उनको तुरंत मैं मार दूंगा, ऐसे तुम आदेश दो। और ये संत जो सारे मेरे राज्य में जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, इस तरह उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, इस तरह जाकर तुम उनको बताओ, इस तरह बोला। इस तरह बोलकर राजा मुड़कर रूप गोस्वामी को पूछा कि आपका मत क्या है इस संत के बारे में, आपको सोचना क्या है ये चैत्र महापुरुष के बारे में। तो रूप गोस्वामी ने बोला, हे राजन, आपके पास जो भी ऐश्वर्य है, आपके पास जो भी राज्य है, आपके पास जो भी धन संपत्ति है, ये सब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही कृपा है। और अभी भी आपके ऊपर उनका भी उनका आशीर्वाद है, और क्योंकि तुम उनके प्रचार के लिए तुम अनुकूल हो, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है। और आप तो राजा हो, राजा जो होता है उनको नरदेव बोला गया है, नरदेव का मतलब भगवान के प्रतिनिधि है, तुम तो अल्लाह के प्रतिनिधि हो, तुम खुद सोच लो कि ये कौन है आया है तुम्हारे राज्य में, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, ऐसे बोला रूप गोस्वामी ने। तो इनाम सिंह शाह थोड़े क्षणों के लिए सोचा और बोला कि मेरे मन से मैं बोल सकता हूं कि ये व्यक्ति जो आया है मेरे राज्य में ये भगवान ही है, ऐसे बोला चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बोला उसने। तो उसके बाद रूप सनातन रात के 12 बजे हैं उस समय अपने महलों को छोड़कर उधर गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। पहले जाकर मिले नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को मिला, दंडवत प्रणाम किया उनको और बोला कि अपनी इच्छा प्रकट की कि हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलना है और उनके शरण जाना है। तो वो लोग लेके गए। इसके बीच में क्या हुआ, कुछ वैष्णव लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो लोगों ने देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु दिन रात वो कीर्तन कर रहे थे ऐसे, तो उनको थोड़ा वो लोग थोड़े डर गए, सोचा कि ये अच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा एक चिट दे दें हाथ में कि आप इस गांव में आकर कीर्तन मत करिए, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरा है आपके लिए और आपके अनुयायियों के लिए, क्योंकि अगर राजा कुपित हो जाएगा तो वो क्या दंड देगा कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा कि आप कृपया इस स्थान को छोड़कर चले जाइए और आप इधर कीर्तन मत करिए, ऐसे उन्होंने चिट में लिखा था कुछ लोगों ने, ये वैष्णव के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वैष्णव लोग अपने अपने घर में अपने विग्रहों की पूजा करते हैं, राजा उनको दंड नहीं देता है, लेकिन पब्लिक में इस तरह हरनाम करने की मना है, इसलिए वो लोग ने ऐसे चेतावनी दी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर दे भी नहीं पाए, क्योंकि महाप्रभु इतना कीर्तन कर रहे थे, वो भी नाच रहे थे, सब लोग नाच रहे थे, कोई निकट ही नहीं जा पाया, और एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे कीर्तन कर रहे थे वो महाप्रभु ऐसे। तो अंत में ब्राह्मणों ने सोचा कि महाप्रभु के अनुयायियों के पास दे दिया चिट उन्होंने, अरे आप लोगों को मालूम इनके बारे में, आप दे दो हा? उनको समझा दो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो बाद में महाप्रभु को पता चल गया, तो जब कीर्तन पूरा हुआ है, कीर्तन को विश्राम देकर महाप्रभु बहुत ऊंचे कंठ में उन्होंने बोला, हे वैष्णव, आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है इस दुनिया में। उन्होंने बोला, ये राजा जो है उसको शक्ति, बोलने की शक्ति किसने दिया है, और अगर राजा को उधर से चलकर मेरे पास आना है तो उसको चलने की शक्ति किसने दिया है। तो उन्होंने बोला, मैंने ही उसको दिया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं मेरे धाम को छोड़कर इधर आया हूं इस दुनिया में, किस लिए, ये नाम को प्रदान करने के लिए सब जीवों को, इसलिए ये नाम कभी नहीं रुकेगा, ये नाम हम वितरण करते रहेंगे ऐसे। उस समय महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी ते अचयदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम, उस समय बोला महाप्रभु ने, ये श्लोक बोला उन्होंने। और इस तरह महाप्रभु सब वैष्णवों के हृदय में साहस प्रदान किया उन्होंने हरिनाम करने के लिए। तो उस समय रूप सनातन ये दोनों जब आए थे, दूर से देखा उन्होंने महाप्रभु कीर्तन करते हुए, तो अपने दोनों हाथ को जोड़कर उन्होंने भूमि में नीचे गिरकर दंडवत प्रणाम करते हुए, ये बहुत फेमस मशहूर श्लोक जो है उसको बताया उन्होंने,
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे महाप्रभु नमो महावदन्याय, आप बहुत बड़े कृपालु हो। क्यों कृपालु हो आप? क्योंकि आप कृष्ण के रूप में राम के रूप में जब आते हो आप तो सब असुरों को आप नाश करते हो, विनाश करते हो, मारते हो अपने आयुधों से। लेकिन जब आप महाप्रभु के रूप में आए हो आप क्या करते हो? सब जीवों के हृदय में आप कृष्ण नाम को देकर उनको जागृत करके उनको प्रेम कृष्ण प्रेम में जुड़ाते हो आप। इसलिए महावदन्याय बताते। इतना ही नहीं, ये धर्म जो होता है बहुत गूढ़ है समझने के लिए। तो लोग ऋषि मुनि इस तरह बनकर जंगल में जाने वाले कितने लोग हैं, गिने चुने लोग होते हैं। लेकिन आप समूह में समाज में आकर लोगों के बीच में आकर आप इतने सरल तरीके से आप भगवान को प्राप्त करने के लिए तरीका जो है उसको अपनाकर उनको दूसरों को भी सिखाकर आप भगवत धाम की प्राप्ति करवाते हो सबको, साधारण जनों को भी, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, जो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सब लोगों को आप क्या कर रहे हो? सबको कृष्ण प्रेम आप प्रदान कर रहे हो। इसलिए आप नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय, आप स्वयं कृष्ण हो, कृष्ण चैतन्य नाम ने। अभी आपका नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य है, गौरत विशेषमा, और आपका शरीर का रंग सुनहरा है। इस तरह बोलकर रूप सनातन दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु के गुणगान की। और रात को जब आए थे मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु हरिदास को लेके गए उनको महाप्रभु के पास, तो अपने दांतों में तृण धारण करके और ये कपड़े अपने गले में, जैसे दक्षिण भारत में क्या करते हैं लोग, अगर कुछ बड़े आदमी को मिलने के लिए जाते हैं अपने अपने पास जो अंगवस्त्र है उसको इधर पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, ऐसे कमर में पहनकर दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसे हम उडुपी मंदिर में जाते हैं अगर हमारे पास कुर्ता है कुर्ता को निकाल कर हम कमर में पहन लेते हैं ऐसे ये कमर, ऐसे कमर में पहनकर दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या है? वो नम्रता का प्रदर्शन है वो। ऐसे इस तरह रूप सनातन ने क्या किया, अपने अंगवस्त्र लेकर ऐसे गले में क्या गर्दन में ऐसे डालकर उन्होंने दंडवत प्रणाम की चैतन्य महाप्रभु को। तो महाप्रभु उनकी ओर देख रहे थे तो महाप्रभु को उन्होंने बोला कि हे महाप्रभु, हम लोग इतने पतित हैं और हम आपके सामने खड़े रहने के लिए भी हम लायक नहीं हैं, हमें शर्म आती है कि हम आपके सामने खड़े हैं, आप स्वयं कृष्ण हैं, आप इतने महान हैं, लेकिन हम इतने पापी हैं फिर भी आपके सामने हम खड़े होकर बात करने के लिए आए हैं। तो खड़े होने के लिए भी हमें शर्म आता है लेकिन हम बात भी कर रहे हैं अपना हम कितने पतित हैं आपको बताने वाले हैं अभी, इसको सोचकर हमें और भी शर्म आता है, ऐसे बोला उन्होंने। और बोला उन्होंने हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पतित हैं, हम बहुत दूषित हैं, हम जगह मदाई से भी हम बहुत पतित हैं, ऐसे बोला उन्होंने। कारण क्या है? जगह मदाई का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में और वो लोग एक बार निमाय पंडित जब जा रहे थे उनको देखकर हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे, जगह मदाई हरे कृष्ण का नाम लेने लगे। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कभी कभी हम जाते समय हाय हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं लोग है? आप लोही बाजार में जाइए वृंदावन में अगर आपको देखेंगे हे हरे कृष्णा इधर आओ हमारे दुकान में खरीदो ऐसे बोलेंगे लोग है? लेकिन उनके हरे कृष्णा बोलना जो है वो सिर्फ बिजनेस के लिए बुला रहे हैं आपको है? तो उसमें कुछ भक्ति भावना नहीं है। फिर भी हरे कृष्ण बोलने से लाभ प्राप्त होता है किसी को भी है? तो ये जगह मदाई निमा पंडित को देखकर बोला कि हे हरे कृष्णा ऐसे बोला उन्होंने, बोला कि हे निमा पंडित आप लोग रात को जो कीर्तन करते हो बहुत मधुर है, ऐसे बोला। निमा पंडित ऐसे देखकर सिर मुड़कर चले गए, उनको उनसे कुछ बात ही नहीं किया। तो रूप सनातन ने बोला कि ये जगह मदाई भी आपके नाम भी लिया है, कीर्तन किया उन्होंने और ब्राह्मण पर्व में जन्मे हैं वो लोग, और हालांकि उन्होंने तरह तरह के पाप किए हैं उन्होंने लेकिन कभी भी किसी मलेच्छ के पास सेवा नहीं की है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? नवाब हुसैन शाह के अंडर सेवा कर रहे हैं। नीच जाति नीच संगी पतिता अदमा ऐसे बोला उन्होंने, बहुत पतित है। और उन्होंने बोला कि देखिए
अगर आप पतित जीवों के लिए खोज में हो तो आपको हम विश्वास दे सकते हैं कि हमारे जैसे पतित कोई नहीं है। आपको मिल गए दो पतित लोग, हम लोग हैं इधर, हमको लेकर आप हमको उद्धार करिए और हमको उद्धार करने से आप बहुत मशहूर हो जाओगे, आपका यश फैलेगा चारों दिशा में, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसे दो पतित लोगों का उद्धार किया ऐसे करके, ऐसे बोला उन्होंने। और हम एक छोटे क्लाउन को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ, ड्वार्फ बोना 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 बोना, ठीक है, हम बोना के समान है, लेकिन हम चंद्रमा को पकड़ने के लिए इच्छा करते हैं, कितना बड़े मूर्ख हैं। एक बोना चत्तक को भी पकड़ नहीं सकता है, चत्तक भी कूद नहीं सकता, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, चंद्रमा को पकड़ने की इच्छा है, इस तरह बताया उन्होंने। जैसे उस गीत में गाते हैं ना, मौसम पतित प्रभु ना पाई बे हारा, पतित पवन है तो तब बता, मौसम पतित प्रभु ना पाई बे आरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, ऐसे ही गाया उन्होंने। एक्चुअली मेरा गला उतना ठीक नहीं है, सबको सुनाई देता है ठीक तरह से, ऐसे बहुत आवाज आ रहा है, आप सहन कर लीजिए। तो रूप सनातन की नम्रता देखकर चैतन्य महाप्रभु खुद रोने लगे। वो बोले, आप लोग इतना नम्र हो, आपकी जो आपकी बात को सुनकर मेरा हृदय टूट रहा है, आप ऐसे मत बोलो आपके बारे में, आपको मालूम नहीं आप दोनों में मैंने बहुत पूर्व पार्षद हो, ये बोथ आर माय ओल्ड एसोसिएट्स, ऐसे बोला चैतन्य महाप्रभु ने। और आपकी ये प्रार्थना को कृष्ण ने सुन ली है, और आपके ऊपर कृष्ण की कृपा आ गई है, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, इस तरह उनको बताया और उनको दीक्षा भी दी, उनको बोला, उनको नाम भी दिया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अनुपम, ऐसे नाम दिया उनको। और महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु बहुत खुश हो गया उन दोनों से, ये मीटिंग रूप सनातन के मीटिंग से हम समझ सकते हैं महाप्रभु से। जैसे जिधर भूमि भूमि में कुछ छिद्र होता है उधर पानी जाता है, है ना, लेकिन जिधर ऐसे पहाड़ होता है उसके ऊपर पानी नहीं जा सकता है। अगर ऐसे एक नदी बह रहा है तो पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा, साइड में जाएगा। इस तरह महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को नम्र बनना होगा। हम नम्रता से पेश नहीं आएंगे, महाप्रभु की कृपा की याचना नहीं करेंगे तो कृपा अपने आप नहीं आएगा। इस दुनिया में ये नम्रता की अनुभव करना बहुत कठिन है। कारण क्या है, खास करके जब हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो वो हमारे सर के ऊपर चढ़ जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं। अगर कोई सुंदर है तो सोचते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सदा अपने पास में एक आईने रखते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहते हैं आईने में अपने को, है ना, सदा अपने शारीरिक चेतना में रहते हैं, है ना। अगर कोई ऊंचा कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला हो, तो हमेशा सदा अपने ब्राह्मणत्व के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे हम IIT में पढ़ते थे, हमको पहले मेस में खाना पड़ा, हमारे IIT के मेस में, तो उधर मेस में दोनों सर्विंग करते थे लोग, नॉन वेज वेज दोनों सर्विंग करते थे, एक साइड में नॉन वेज एक साइड में वेज, ऐसे तो हम वेजिटेरियन खाते थे। तो खाते में पास में बाजू में कभी कभी विद्यार्थी लोग बैठकर अंडे खाते थे, नॉन वेज खाते थे ऐसे। तो ये एक व्यक्ति ने सुना कि मैं भगवद गीता के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, बोला मुझे भी भगवता मालूम है, ऐसे अपने जनेऊ को दिखाया उसने, लेकिन हाथ में तो अंडा है और इस हाथ में जनेऊ है, होता कि मैं ब्राह्मण हूं ऐसे। ऐसे तो लोग बहुत गर्व करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, हालांकि ब्राह्मण के गुण उनके अंदर नहीं है ऐसे। तो इसलिए ये गर्व को त्याग कर भीख मांगना, कृपा की भीख मांगना बहुत कठिन है। मैं एक बार ब्रह्मचारियों को पूछा, आप में से कितने लोगों को अनुभव हो रहा है कि आपको दूसरे वैष्णवों की सहायता की जरूरत है, दूसरे वैष्णवों के आशीर्वाद की जरूरत है, दूसरे वैष्णवों के ऊपर आप निर्भर हैं? तो अनेक लोगों ने बोला कि हमें ये मालूम है कि हमें निर्भर होना चाहिए, लेकिन दूसरे वैष्णवों के ऊपर निर्भरता की अनुभव हमें नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं खुद मैं शक्तिमान हूँ, मेरे अंदर अनेक शक्तियां हैं, मेरे अंदर बुद्धिमत्ता है, मेरे पास बहुत से योग्यताएं हैं, इस तरह हमारे मन बोलता है। इसलिए बड़े पदवी में होकर नम्र बनना, सरल रहना, शुद्ध रहना उतना आसान काम नहीं है। तो रूप सनातन ऐसे शुद्धते, सरलते, महानते हैं, नम्रते ऐसे, इसलिए महाप्रभु की कृपा उनके जीवन में आ गई बहुत आसानी से। दूसरा ऐसे एक लीला आता है रूप गोस्वामी के जीवन में, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में थे, प्रयाग धाम में, तभी वल्लभाचार्य, आपको मालूम है वल्लभाचार्य जो है वो एक परंपरा के बड़े आचार्य हैं, ये रुद्र संप्रदाय के, उनके संप्रदाय में वल्लभाचार्य को महाप्रभु बोलते हैं। आप देखेंगे गोपाल जो नाथ द्वारा में पूजा किया करते हैं, क्या उनका नाम बोलते हैं गोपाल को, श्रीनाथ जी बोलते हैं। श्रीनाथ जी की एक ओर यमुना है, दूसरी ओर वल्लभाचार्य, आप देखेंगे बहुत महान आचार्य हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट पार्षद थे, मित्र भी थे वल्लभाचार्य। तो एक बार वल्लभाचार्य थे प्रयाग में, वो चैतन्य महाप्रभु के साथ बात कर रहे थे। उस समय रूप सनातन थोड़े दूर से वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो सनातन नहीं थे शायद, रूप को समय अनुपम, रूप को समय अनुपम दंडवत प्रणाम कर रहे थे बड़े दूर में। तो उसको देखकर वल्लभाचार्य मुस्कुराने लगे और पास में गए उनको ऐसे आलिंगन करने के लिए। तो तुरंत रूप गोस्वामी अनुपम उठकर वो भागने लगे दूसरी ओर में, दूसरी दिशा में। और रूप गोस्वामी बोल रहे थे कि आप हमारे पास मत आइए, हम बहुत पतित हैं, हम बहुत नीचे हैं, आप पास मत आइए, ऐसे बोले। तो इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला वल्लभाचार्य को, सही बोला उन्होंने कि ये दोनों पतित हैं और ये नीच हैं। क्यों? क्योंकि आप बड़े ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण होने के कारण ऐसे नीचे लोगों के पास आप नहीं जाएंगे, इसलिए वो लोगों ने ऐसे बोला आपको, ऐसे बोला महाप्रभु ने। तो उसमें वल्लभाचार्य ने बोला महाप्रभु को, ये कैसे बोल सकते हैं कि ये पतित हैं, इनके मुंह में तो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे सदा नित्य निरंतर निकलता रहता है इनके मुंह से, ऐसे लोग पतित कैसे हो सकते हैं, ये तो सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ हैं, सारे नरों में श्रेष्ठ हैं ये। क्योंकि उन्होंने बताया जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, विप्रात विषट गुण युता तरविंद नाभा पादारविंद विमुखाश्वपचं वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमान। हे भगवान, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने पांडित्यता और अपने ऊंचा कुल के बारे में बहुत गर्व करते हैं, और दूसरी ओर से जो शपच होते हैं, चंडाल होते हैं, म्लेच्छ होते हैं, यवन होते हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका ऊंचा जन्म नहीं है, बहुत नीचा जन्म है, वो चार वर्ण आश्रम में नहीं है, उसके बाहर है, वो आउटकास्ट माने जाते हैं। लेकिन अगर वो आपके नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो नाम लेने से इतने शुद्ध हो जाते हैं, अपने सारे पीढ़ी को वो शुद्ध करके भगवत धाम भेज सकते हैं। लेकिन वो ऐसे ब्राह्मणों से भी वो श्रेष्ठ है, ऐसे प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो इसको बताकर वल्लभाचार्य ने बोला कि इसलिए रूप सनातन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन हम समझ सकते हैं रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की नम्रता को हम समझ सकते हैं इस घटना से, हम समझ सकते हैं इसे। तो महाप्रभु बहुत खुश थे रूप गोस्वामी से, उन्होंने प्रयागराम के बाद उन्होंने लेके गया उनको एक दशाश्वमेध घाट नाम के एक स्थान में, उधर सिर्फ रूप गोस्वामी को अकेले उन्होंने 10 दिन का सदुपदेश दी उन्होंने, जिसमें अनेक चीजों के बारे में उन्होंने सिखाया उनको, उनको सिखाया कैसे चार आचार्य होते हैं और चार आचार्य में जो चलने वाले जीव होते हैं उनमें पानी में जीने वाले जीव राशियां होती हैं, भूमि में चलने वाले होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य में भी 2 श्रेणी के लोग होते हैं, जो सभ्य लोग हैं जो असभ्य लोग हैं। जो असभ्य लोग होते हैं वो बहुत अशुद्ध रहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, उनको शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन जो सभ्य लोग हैं वो शास्त्र को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। और ऐसे मनुष्यों में कोटानुकोटि मनुष्यों में से आप देखेंगे धर्मपरायण जो होते हैं उनमें 99% लोग होते हैं जो भौतिक प्राप्तियों के लिए पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग होते हैं जो ज्ञानी बनते हैं। और वो लोग जो होते हैं वो भी उसमें भी 99% लोग जो होते हैं ज्ञानी लोगों में, तो वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तो कृष्ण भक्त जो है वो बहुत दुर्लभ है। मुक्ता नाम अपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटीश्वपि महामुने। कोटि कोटि ज्ञानियों में, सिद्ध पुरुषों में, योगियों में कृष्ण भक्त एक ही है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। तो महाप्रभु ये सब सिखाया उनको। उसके बाद उन्होंने बताया कि कृष्ण भक्ति में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, ऐश्वर्य भक्ति है और माधुर्य भक्ति है। ऐश्वर्य क्या है, माधुर्य क्या है, वृंदावन में 5 रस क्या क्या है, और इन 5 रस में, ये 5 रस में प्रधानता के साथ कौन कौन भगवान की भक्ति करते हैं, और राधारानी कौन है, यशोदा कौन है, ये सब महाप्रभु ने उनको विस्तृत तरीके से रस तत्व को भी उन्होंने सिखाया 10 दिन लगातार ऐसे। उसके बाद महाप्रभु वाराणसी जाने वाले थे तो रूप गोस्वामी ने बोला मैं भी आपके साथ आऊंगा, मुझे भी लेके जाइए। महाप्रभु मना किया, बोला कि मैंने तुमको आदेश दिया है कि तुम वृंदावन जाओ, और वृंदावन में उन्होंने रूप गोस्वामी को अनेक आदेश दी थी, खास करके 4 आदेश दी थी उन्होंने। वृंदावन में जाओ और तीर्थ स्थलों को ढूंढ निकालो, क्योंकि इतने साल बीत गए हैं, भगवान कृष्ण लीलाएं करके 5000 साल बीत गए हैं, इसके बाद अनेक लोगों को अभी मुगल मुसलमान लोगों के इन्वेशन आक्रमण के कारण, उसके बाद अनेक लोग भक्ति करने के लिए भी डरते थे, लोग चुपके भक्ति करते थे, लोग तीर्थ स्थल वो सब क्या बोलते हैं, अप्रस्थान हो गए, विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए। इसलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम वृंदावन में जाओ और ऐसे तीर्थ स्थलों को ढूंढ निकालो। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो श्री विग्रह हैं मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, उनको भी ढूंढो, वो तो कहीं ना कहीं छुपा होगा वो, और क्योंकि ये बहुत महा ये श्री विग्रह जो है इनको ढूंढ कर इनको मंदिर स्थापन करो वृंदावन में, और श्री विग्रह की आराधना को स्थापन करो, कैसे श्री विग्रह की आराधना करना चाहिए वो सबको सिखाओ, ये दूसरा उन्होंने बताया था। तीसरा उन्होंने बोला कि सब सारे ग्रंथों को लेकर पढ़कर उसके सारांश को निकाल कर लोगों को सिखाओ, कैसे सब शास्त्रों का सारांश सिर्फ कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम, यही सब सारे शास्त्रों का सारांश है, इसको ढूंढ निकाल, इसको सारांश को लिखने किताबों को लिखो। चौथा उन्होंने बोला कि तुम खुद भगवान की आराधना करते हो, शास्त्र लिखा है तुमने, उसके अनुसार तुम जीवन जियो, और साथ साथ तुम वैष्णव आचार के ऊपर किताबों को लिखो, और जिसको अपना कर लोग सदाचार अपना सकते हैं अपने जीवन में। ये 4 आदेश उन्होंने दिया थी रूप सनातन को। महाप्रभु बोला कि मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे लिए कर्तव्य दिया है, मेरे साथ बताओ अभी तुम वृंदावन चले जाओ, ऐसे आदेश दिया महाप्रभु ने। तो रूप गोस्वामी वृंदावन गए, और वृंदावन जाने के बाद वो वृंदावन में राधा गोविंद की खोज में थे वो, बहुत खोजा उन्होंने, घर घर में गए, घर घर में ढूंढने लगे कि किसने राधा गोविंद देव को अपने घर में छुपा कर रखा है। वो ढूंढने के लिए गए, सारे वृंदावन में घूम कर देखा, मिले नहीं। तो रूप गोस्वामी बहुत थक गए, तो ये एक स्थान में बैठकर वो रोने लगे भगवान के स्मरण में। तो अपने मन में प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे, हे भगवान आप किधर छुपे हो, आप क्यों इस तरह हमको दर्शन नहीं देते हो, तो मैं महाप्रभु के आदेश को मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह। तो उस समय एक सुंदर गोप बालक आया उधर, तो रूप गोस्वामी को बुलाया उसने, तो आप क्यों इतना चिंतित हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ऐसे पूछा उन्होंने। तो बोले रूप गोस्वामी, तो गोपाल ने बोला मुझे मालूम है आपके गोविंद देव किधर है, मेरे से ताइए मैं आपको लेके जाऊंगा। वो लेके गया, और एक जो एंट हिल होता है ना, एंट हिल क्या बोलते हैं, एंट हिल, ये चींटियों का एक ऐसे पहाड़ जैसा होता है, उधर उन्होंने दिखाया कि आपकी जो प्राणधन है इसके अंदर है, इस तरह बोला उन्होंने, और तुरंत वो प्रस्थान हो गया, गायब हो गया उधर से। तो वहां ये रूप गोस्वामी समझ गए कि ये साक्षात कृष्ण ही आकर मुझे दिखाया ऐसे है। तो कुछ लोगों की मदद लेकर उसको तोड़ने के बाद अंदर देखा, गोविंद देव मिल गए। तो गोविंद देव को खोद कर निकाला है, और उसके बाद हम बता सकते हैं हर एक वृंदावन के जो श्री विग्रह कैसे कैसे प्रकट हुए, राधा रमन कैसे प्रकट हुए, गोविंद देव कैसे प्रकट हुए, मदन मोहन कैसे प्रकट हुए, ऐसे रूप सनातन ने महाप्रभु के आदेश को पालन किया, ऐसे उनके लिए मंदिर बनाकर बहुत सुंदर तरीके से सजाकर विग्रह आराधना वगैरह की उन्होंने। तो एक समय रूप गोस्वामी आए थे जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु को मिलने के लिए आए थे। उधर जो घटना घटी वो ही सबसे महत्वपूर्ण घटना है रूप गोस्वामी के जीवन में, और हमारे लिए भी सबसे विशेष घटना है। वो घटना जो उधर घटी, जो ये श्लोक जो मैंने लिया था भागवत से, उस श्लोक से जुड़ा हुआ है वो लीला जो जगन्नाथपुरी में हुआ, इसलिए वो जो अभी मैं बोलने वाला हूं आप सब लोग तके नहीं होना, बोल सकता हूं आगे, क्योंकि ये घटना मैं पहले बोलना था, मैं थोड़ा 12 बजे तक इसके बारे में बोलता रहा, क्योंकि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझेंगे हम इससे हमें बहुत अनेक लाभ होगा। एक लाभ होगा, हम रूप गोस्वामी की असल स्थिति क्या है वो हम समझेंगे, वो एक चीज है। दूसरा है हम समझेंगे इन लीलाओं के द्वारा एक वैष्णव को कैसे दूसरे वैष्णवों के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए, हम वो समझेंगे, वो भी इस लीला के द्वारा हम समझेंगे। और तीसरा समझेंगे हम कैसे हमें उच्च कोटि का शिष्य हम बन सकते हैं अपने जीवन में, ये भी हम समझ सकते हैं। इस लीला से हमें बहुत अनेक चीज हमें प्राप्त होगा। तो रूप गोस्वामी जब आए थे उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का चक्र को देखा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के पास भी निकट भी नहीं गए वो। कारण क्या है, उन्होंने सोचा अपने आप को कि मैं बहुत पतित हूं। ऐसा ही आपको मालूम है सनातन गोस्वामी भी मना करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा जगन्नाथ मंदिर में अंदर दर्शन के लिए, क्योंकि हम लोग नालायक हैं तो दर्शन करने के लिए, हम पतित हैं ऐसे। लेकिन सिर्फ चक्र को देखकर दंडवत प्रणाम करते थे ऐसे। तो रूप गोस्वामी रहते थे किसके साथ, हरिदास ठाकुर के साथ। तो एक दिन रथ यात्रा हुई, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु एक मधुर गीत गा रहे थे, और दूसरे वैष्णव लोग जो थे उधर वो समझ भी नहीं पाए कि ये क्या गाना महाप्रभु गा रहे हैं, क्योंकि वो गाना ऐसा था कोई प्रेमिका कोई प्रेसी के लिए कुछ गीत गा रहा हो, जैसे कुछ डुएट सॉन्ग होता है ना सिनेमाओं में, ऐसा था। तो कुछ लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कभी ऐसे कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग, ये क्या गाना गा रहे हैं महाप्रभु, क्यों गाया, क्या गाया, किस लिए गाया, उनको मालूम नहीं था वो गाने का मतलब क्या था। हे मेरे प्रिय प्रेमिका, ऐसे शुरू हुआ वो, कि ये कदंब वंश से निकलने वाले जो ये सुगंधित मल्लिका पुष्पों का जो हवा निकलता है वही हवा है इधर, और आप वही कृष्ण हो और ये चैत्र महीना है, लेकिन मैं देखती हूं कि जो मधुरता उधर है इधर नहीं है, ऐसा वो गा रहे थे। तो लोग सोच रहे थे किधर के, किसके बारे में बोल रहे, किधर है, उधर है, इधर है, क्या है, ऐसे लोग सोच रहे थे। तो कोई जान नहीं पाए इसको, लेकिन बाद में ये रथ यात्रा होने के बाद एक बार रूप गोस्वामी ने क्या किया, ये एक बहुत सुंदर गीत लिखी थी उन्होंने, वो लिखकर वो हरिदास ठाकुर के जो कुटीर था वो कुटीर के छत के ऊपर ऐसे रखकर, कॉटेज जो था कॉटेज के ऊपर ऐसे रख दिया उन्होंने, रखकर वो नहाने के लिए चले गए समुद्र में। और इतने में महाप्रभु आ गए उधर, आकर देखा कि कुछ किसी ने रखा है इसे क्या बोलते हैं उसको, ताड़ पत्र बोलते हैं उसको ना, ताड़ पत्र, ताड़ पत्र को निकालकर पढ़ा महाप्रभु ने। एक सुंदर गीत था उसमें, वो गीत में क्या लिखा था, महाप्रभु जो गीत गा रहे थे गुप्त रूप में, उसी गीत को रूप गोस्वामी ने क्या की थी उसको समझने वाले भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाया था उन्होंने। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, आप अभी कुरुक्षेत्र में हो, इधर बहुत बड़े बड़े रथ हैं, इधर हाथी हैं, घोड़े हैं, इस तरह सब आवाज कर रहे हैं। देखिए वृंदावन में जो मधुरता है, जिधर जो मधुमक्खियां आवाज करती हैं, जो कदम का वन है, सुगंधित हवा निकलती है उधर से मल्लिका पुष्पों का, और उधर मयूर नाचते हैं और चिड़िया कलरव करती हैं, इतना बहुत मधुर वृंदावन है। और आप उधर आप बांसुरी बजाते हो और आप त्रिभंग रूप में आप खड़े रहते हो और आपकी मधुर आवाज से सब आकर्षित होते हैं, तो इस तरह का आकर्षण इधर कुरुक्षेत्र में नहीं है, इसलिए आप कृपया वृंदावन वापस आ जाओ। इस तरह राधा रानी गाती है कृष्ण को देखकर, इस तरह रूप गोस्वामी ने लिखी थी। इसको जब पढ़ा महाप्रभु ने, इतना प्रेम विभोर हो गए वो, तुरंत वो प्रेमावेश में आ गए, तो रूप गोस्वामी युद्ध में आ गए, तो रूप गोस्वामी को गले लगाया, गले मिलाया उन्होंने, और ऐसा प्रेम से उन्होंने इसे लाफा दिया, उनको लाफा बोलते हैं, इसे लाफा दिया प्रेम से। उन्होंने पूछा कि रूप तुमने कैसे इतना मेरे अच्छी तरह मेरे मन को समझा तुमने, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड माई हार्ट, यू एग्जैक्टली एक्सप्रेस्ड माई हार्ट इन दिस पोयम, ऐसे। तो रूप गोस्वामी अपने सर झुक कर जमीन को देख रहे थे शर्म से, तो वहां पर इतने खुश हो गए। तो वहां प्रभु ये गीत को लेके गए अपने पास, तो जाकर सरू दामोदर को भी दिखाया उन्होंने, देखो ये गीत कैसे लिख पाया रूप गोस्वामी, ऐसे पूछ रहे थे उनको। तो सरू दामोदर ने बोला, ये महाप्रभु ये तो आपका ही कृपा है, आपने कृपा बरसा है रूप गोस्वामी के ऊपर, इसलिए वो इस तरह का गीत लिख पाया, आपके मन समझ गए रूप गोस्वामी ने। इसलिए हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, महाप्रभु के मन की अभीष्ट का मतलब है इच्छाएं, उसको समझने वाले कौन है, रूप गोस्वामी है। देखिए भागवत में बताया है उत्तमश्चिंतितम कुर्यात, जो शिष्य गुरु के मन को समझने वाला है वो उच्च कोटि का शिष्य है। और दूसरा बताया है सेकंड वन, उत्तम चिंतितम कुरिया प्रोक्त कारी च मध्यम। अगर गुरु एक शिष्य को बुलाकर बोलते हैं ऐसा करो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, तभी जो करता है वो दूसरे श्रेणी का शिष्य है। अकुर्यात अदमो ऐसा बोला गया, जो व्यक्ति गुरु बार बार बोलने के बाद भी करता नहीं है, बोलता है कि मैं करूंगा करूंगा बाद में करूंगा अगले जन्म में करूंगा, ऐसे पोस्टपोन करते रहता है, वो क्या है, वो अदम है ऐसा बताया गया, वो तीसरे श्रेणी के है। हमें किस श्रेणी के गुरु शिष्य बनना चाहिए, किस श्रेणी के, कितने लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास हाथ पकड़े, हो आधे भी ज्यादा है, ठीक है, कितने लोग बोलते हैं सेकंड क्लास, हाँ हाँ बहुत कम है, अच्छा हमें सेकंड क्लास डिवोटी बनना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु के मानसिक इच्छाओं को समझना हमारे शक्ति में नहीं है। जैसे नित्यानंद प्रभु दंडभंग नदी के पास जब महाप्रभु के साथ जा रहे थे, तभी उन्होंने महाप्रभु के संन्यास दंड को लेकर तीन टुकड़ा कर दिया उन्होंने ऐसे, और फेंक दिया ऐसे। और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनको पूरी जाने के बाद, ए नित्यानंद मेरे दंड किधर है, दंडा किधर? हो बोले कि महाप्रभु आप तो नाच रहे थे, प्रेमावेश में नाच रहे थे, ऐसे दंडा टूट गया, कहीं ना कहीं तो गिर गया, मुझे मालूम नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। उन्होंने क्यों दंडा को थोड़ा, नित्यानंद प्रभु ने उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु तो परमहंस स्तर पर है, उनको दंड की क्या जरूरत है? परिव्रजक लोग दंडा लेकर जाते हैं, परमहंस लोग दंडा नहीं रखते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो परम भगवान कृष्ण है, कृष्ण के लिए दंड की क्या जरूरत है? ये तो कृष्ण तो भोगता है, उनके पास घुंघराले बाल होना चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना चाहिए, अच्छे आभूषण पहनना चाहिए, लेकिन ये तो संन्यास वेश ऑलरेडी धारण कर लिया और दंडा भी लेके जा रहे हैं, दंडा को तोड़ दो, ऐसे तोड़ दिया उन्होंने। लेकिन महाप्रभु अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। और महाप्रभु ने बोला, देखो नित्यानंद, मैं तुमसे बहुत कुपित हूँ, क्रोधित हूँ, इसलिए तुम क्या करो, तुम बंगाल जाओ और उधर ही बंगाल में तुम प्रचार करो, इधर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय मत आना, ऐसे बोला महाप्रभु ने। और उस साल रथ यात्रा जब हुआ, नित्यानंद प्रभु आ गए उधर, और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने देखा उधर। तो आप सोच, आप बोलेंगे प्रभु जी महाप्रभु ने बोला, आदेश दिया उनको तुम बंगाल जाओ, लेकिन रथ यात्रा के लिए किधर आ गए हो? जगन्नाथपुरी में आ गए। क्या उन्होंने महाप्रभु के आदेश को तोड़ा नहीं? उन्होंने महाप्रभु के आदेश को तोड़ा नहीं, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी उनके मन में, नित्यानंद प्रभु को उधर रथ यात्रा में आना चाहिए, ऐसी इच्छा थी मन में, एक इच्छा थी लेकिन बोला उन्होंने कुछ और। लेकिन मन की इच्छा को कौन समझ गए? नित्यानंद प्रभु समझ गए, इसलिए उच्च कोटि के शिष्य ऐसा है। लेकिन अगर हम लोग उच्च कोटि के शिष्य का नकल करेंगे ना, हमारा पतन हो जाएगा। जैसे एक शिष्य था प्रभुपाद के समय, वो बोला कि प्रभुपाद जी मैं इच्छा करता हूँ कि मैं हरिदास ठाकुर जैसे 300,000 नाम मैं जपना चाहता हूँ रोज वृंदावन में रहकर, ये खुद का कुटीर बना लूंगा, मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला कि ये करो मत, ये प्रचार का संस्था है, सब लोग प्रचार करना चाहिए, तुम प्रचार में जाओ। वो बार बार हट गया, प्रभुपाद ने मना किया, प्रभुपाद ने बोला कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पतन होगा, तो चला गया वो बाद में। तो दूसरे शिष्यों ने उसको पकड़ा, वो लोगों ने बोला कि देखो प्रभुपाद ने मना किया, तुमको नहीं जाना चाहिए। उसने बोला कि प्रभुपाद मुंह से बोल रहे हैं तो मत जाओ, इस तरह 300,000 नाम मत जपो, लेकिन मैं समझ गया उनके हृदय की इच्छा, हृदय में इच्छा क्या है उनकी, उनको मालूम है कि मैं अकेला 300,000 नाम जप कर सकता हूँ, लेकिन अगर हाँ बोलेंगे तो आप लोग मेरा नकल करेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम ऐसा मत करो, इसलिए मैं प्रभुपाद की इच्छा समझ गया, इसलिए मैं जाने वाला हूँ। तो गया, कुछ समय जब किया, इसे कुछ समय के बाद वो गायब हो गया, वो लोगों को पता नहीं चला किधर गया वो। तो अंत में लोग पकड़े उसको, एक पेट्रोल बंक में पेट्रोल देने वाला बन गया वो। तो लोगों ने पूछा उसको, ए तुम तो पेट्रोल बॉय बन गए तुम, तुम्हारा बड़े बाबा जी वेश किधर चला गया, ऐसे पूछा लोगों ने। और भक्तों ने पूछा, क्या तुम नाम जपते हो? बोला नहीं, बोला उसने नहीं करते हो, अरे तुम तो 300,000 नाम जपने वाले थे, अभी नाम भी छोड़ दिया पूरा। वो बोला कि आने वाले 5 साल के लिए पहले से मैं एक्स्ट्रा करके रख दिया मैंने, इसलिए उसके बाद मैं करूंगा, ऐसे बोला उसने। तो हम गुरु के हृदय में क्या इच्छा है समझना हमारे वश में नहीं है, इसलिए हमें गुरु से पूछना ही अच्छा है, गुरु जी आप बोलो क्या करना चाहिए मुझे, जो गुरु बोलते हैं उसको करना चाहिए, यह श्रेष्ठ है। इसलिए हमें किस श्रेणी के शिष्य बनना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं ये पहले श्रेणी के? कोई नहीं, दूसरे श्रेणी के? हाँ, सब लोग समझ गए अभी। मुझे थोड़ा शंका था, मेरे आवाज इतना गड़गड़ आवाज है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, तो हमें दूसरे श्रेणी के शिष्य बनना चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी किस श्रेणी के शिष्य थे? पहले फर्स्ट क्लास शिष्य थे वो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे महान आचार्य की हम पूजा कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं बस। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गया ऐसे। तो अगले दिन महाप्रभु उधर आए थे अपने पार्षदों के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य जो बहुत बड़े राजा प्रताप रुद्र के वो मंत्री थे और गुरु भी थे वो उनके साथ आए महाप्रभु और साथ साथ उनके साथ स्वरूप दामोदर थे साथ साथ उनके रामानंद राय थे तो रस तत्व के आचार्य हैं और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के इतने निकट पार्षद हैं कि महाप्रभु कुछ भी गीत पढ़ते नहीं थे जब तक स्वरूप दामोदर उसको सैंक्शन नहीं करते थे ऐसे तो ये सब आए थे महाप्रभु के साथ तो दूर से देखा हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी तुरंत वो उठ गए दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु और उनके पार्षदों को एक ऊंचा आसन दिया उन्होंने और दोनों नीचे बैठ गए तो महाप्रभु ने बुलाया उनको आओ इधर बैठो लेकिन वो बोला कि नहीं नहीं हम पतित हम नहीं बैठेंगे उधर नीचे ही बैठे रहे रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर तो महाप्रभु ने बोला कि रूप गोस्वामी को बोला कि उस दिन जब मैं आया था आपने इतना अच्छा गीत लिखी थी तो नहीं इसके पहले एक घटना घटी मैं भूल गया अगले दिन महाप्रभु वापस आए थे एक दिन बाद आए थे उस दिन रूप गोस्वामी ऐसे लिख रहे थे कुछ महाप्रभु ने बोला कि तुम क्या लिख रहे हो मुझे दिखाओ तो उन्होंने ऐसे ताड़पत्र लेकर देखा इतना सुंदर सुंदर उनका लेख था उनका लिखना इतना सुंदर था कुछ लोगों का हैंड राइटिंग होता है इतना सुंदर होता है तो महाप्रभु ने उनकी इतनी प्रशंसा की रूप गोस्वामी की कि तुम्हारा लेख लिखना जो है ऐसे मोती के समान है ऐसे उन्होंने प्रशंसा की ऐसे ही एक एक करके देख रहे थे एक गीत है का उन्होंने एक गीत में ऐसे लिखा था एक गीत था वो तुंडे तांडव नीरतिम्बितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदंबिनी घटयते कर्णार्बुदे व्यस्पृहां चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्विरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी ये लिखा था उन्होंने तो उसका मतलब क्या है हे भगवान कृष्ण तुम्हारे कृष्ण इसको कोई बोलता है उसमें इतना मधुरता है कि मुझे लगता है कि मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए और करोड़ों कान चाहिए आपके नाम गाने के लिए और जब आपका नाम मेरे हृदय में प्रवेश करता है मेरे सब इंद्रिय भौतिक पदार्थों से भौतिक पदार्थों से दूर चले जाते हैं और दे बिकम इनएक्टिव टू मटेरियल अट्रैक्शंस और मैं जागृत हो जाता हूँ भक्ति भावना से इस तरह उन्होंने एक गीत लिखी थी महाप्रभु ने एक गीत गाया इतने खुश हो गए महाप्रभु उसको सुनकर हरिदास ठाकुर नाचने लगे और वो गान लेना क्योंकि वो तो हरिनाम के आचार्य है हरिनाम का गीत था इसलिए महाप्रभु ये गीत को सुनने के बाद ही महाप्रभु ने अपने पार्षदों को अगले दिन लेके आया साथ में और भला सब अपने पार्षदों को कि ये रूप गोस्वामी जो है ये इतना महान है मैं मेरे पास शब्द नहीं है इसकी गुणगान करने के लिए तो ऐसे बताया जाता है कि महाप्रभु कभी कभी गुणगान करते थे मानो उनके पास पांच मुख हो गुणगान करने के लिए ऐसे गुणगान करते थे रूप गोस्वामी के तो और उन्होंने रूप गोस्वामी को बुलाया पास में बोला कि उस दिन जो मुझे एक ताड़पत्र प्राप्त हुआ जो आपके छत क्या बोलते हैं छत से जो प्राप्त हुआ वो गीत सबसे महत्वपूर्ण गीत है वो गाओ तुम लेकिन रूप गोस्वामी बहुत उनको लज्जा आया कि इतने महान वैष्णव के सामने मैं कैसे मैं गा पाऊंगा वो तो अपने सर झुककर शांत रहे वो तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला तुम गाओ तो वो गीत गाया उन्होंने जो मैंने पहले बोला था तो उसको सुनकर सब वैष्णव वाह वाह करने लगे रूप गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे और महाप्रभु बता रहे थे पूछा महाप्रभु ने रामानंद राय को रामानंद राय कैसे ये रूप गोस्वामी मेरे पूरा मन का गति जान सकता है इसके अंदर कैसा यह शक्ति है इसे किसको पूछा उन्होंने रामानंद राय को पूछा रामानंद राय ने बोला कि महाप्रभु आप जब गोदावरी के तट में आए थे इस तरह मेरे मुख के द्वारा भी आपने अनेक गीत निकाला लेकिन वो सब आपका ही था मैं तो एक वीणा के समान हूं लेकिन आप वीणा बजाने वाला कौन है आप हो मेरा जिह्वा एक वीणा के दाग के समान है और वीणा बजाने वाला कौन है आप है इस तरह आपने शक्ति प्रदान की है रूप गोस्वामी को इसलिए वो गा रहा है ऐसे वो बता रहे थे रामानंद राय ये आपका ही कृपा है ऐसे तो उसके बाद रामानंद राय ने बोला कि मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा रस तत्व के संबंध में तो पूछने लगे ये भक्त श्याम सुंदर के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे थे, उधर ऐसे एक श्लोक है जो कंपेयर करता है कि ये कृष्ण भक्ति जो है ये शिखरिणी के समान है। शिखरिणी मालूम है, शिखरिणी का मतलब है ये एक रबड़ी के समान है, वो एक बहुत मधुर एक पकवान है, इसके समान है। और वो सब वैष्णवों को के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब सारे वैष्णव दुनिया में किधर भी हो सब वैष्णव को कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो और वो मायावाद से इन चीजों से बचे और उनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद का श्लोक है। तो जब रामानंद्र प्रश्न पूछते थे तुरंत रूप गोस्वामी जवाब देते थे और सब वैष्णव उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसे एक के बाद एक के बाद रामानंद ने प्रश्न पूछा, महाप्रभु सुन रहे थे। उसके बाद ये सर्वम भट्टाचार्य ने कुछ प्रश्न पूछा, उसके बाद स्वरूपदामोदर ने कुछ प्रश्न पूछा, और जब रूप गोस्वामी ने जवाब दिया तभी वैष्णव को पता चला कि उन्होंने जो भी गीत लिखा है उसमें कितना वैष्णव की मर्मता है उसमें, समझ गए। तो ये सब सुनकर सब वैष्णव बहुत खुश हो गए और महाप्रभु ने बोला सब वैष्णव को, रूप गोस्वामी को बोला उन्होंने, सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम करो तुम और सबसे आशीर्वाद मांगो। और उस समय रामानंद राय ने बोला रूप गोस्वामी को, मैंने सुना है कि तुमने ये गीत लिखा है वो गीत सब गीतों में से श्रेष्ठ है, जो तुम्हारे प्राण धन के बारे में तुमने ये गीत लिखा है वो गीत बताओ, ऐसे बोला उन्होंने। तभी रूप गोस्वामी बहुत खुशी से बोलने लगे वो गीत, आपको मालूम है क्या है वो, अनार्पित चरिम चिरात करुणयात अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम हरि प्रट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे सुरतौ वह शचि नंदनः। मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण शचि नंदन के रूप में अवतरित हुए हैं और वो सारे दुनिया को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और इतना ही नहीं ये माधुर्य भक्ति को प्रदान कर रहे हैं जो अनादिकाल से लोग इसको भूल चुके हैं, इसको प्राप्त नहीं किए हैं, उसको वापस वो प्रदान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो महाप्रभु मेरे हृदय में बसे और मेरे हृदय रूपी गुफा जो है उसमें जो भी अंधकार है उसको निकाले और वो कृष्ण प्रेम से भर जाए, इस तरह उन्होंने ये गीत लिखी। तो बताया महाप्रभु इसको सुनकर बोलने लगे, बड़ी से अलास अलास हाय हाय बोलने लगे वो महाप्रभु। महाप्रभु ने बोला कि क्या कर दिया रूप गोस्वामी, तुम ये के बाद इतना अच्छे अच्छे तुम कीर्तन बता रहे थे। इसके ही पहले महाप्रभु ने उनको पूछा था कि जो तुमने गीत लिखा जो सब जीवों के तकलीफ को मिठाने वाला गीत वो बताओ, बोला महाप्रभु ने। वो गीत क्या था मालूम है, तुंडे तांडव निरति मिथुन थे, वो था। उसको रूप गोस्वामी को बोलने के लिए बोला था उन्होंने, लेकिन अभी लास्ट में जो गीत बोला उन्होंने बोला हाय हाय बोला, तुमने तुम्हारे जो सब सारे गीत एक स्वीट रेस के समान है, स्वीट रेस बनाते हैं उसके समान है, लेकिन उसमें तुमने थोड़ा विष मिला दिया तुमने, ये लास्ट श्लोक बोलकर। महाप्रभु ने क्यों ऐसे बोला, क्योंकि ये गीत महाप्रभु की गुणगान था, महाप्रभु की यश की गुणगान करने वाला श्लोक था, अनार्पित चरिम चिरात ऐसे 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 बोला। तो रामानंद तुरंत आगे सामने बोले, उन्होंने बोला कि महाप्रभु ये रूप गोस्वामी का गीत किसके समान है, ये एक रबड़ी के समान है, और इसमें लास्ट में उन्होंने जो श्लोक बोला आपके बारे में ये कर्पूर के समान है, ऐसे बोला उन्होंने ना। इस तरह बोलकर सब वैष्णव बहुत आनंदित हो गए। अब सबने रूप गोस्वामी को, उस समय महाप्रभु ने उनको एक टाइटल दिया रूप गोस्वामी को, रसाचार्य ऐसे, इसलिए रसाचार्य कौन है, रूप गोस्वामी है ना? तो सब वैष्णव के आशीर्वाद प्राप्त हुई, सर्व भट्टाचार्य की, स्वरूप दामोदर की, रामानंद राय की, इतने महान महान वैष्णवों की आशीर्वाद को प्राप्त करके उसके बाद रूप गोस्वामी वृंदावन लौटे और महाप्रभु के सब आदेशों को निभाए उसके बाद, इस तरह हम समझते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उन्होंने महाप्रभु की, ऐसे बताया जाता है कि महाप्रभु की जो भी शिक्षा है महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोकों में दिया है शिक्षा अष्टक में, लेकिन बाकी शिक्षा है महाप्रभु जो बोलना चाहते थे वो किधर है, रूप गोस्वामी की शिक्षा में है, ऐसे बताया जाता है। उनकी सब शिक्षा को रूप गोस्वामी ने रिप्रोड्यूस किया ऐसे ही। तो आज रूप गोस्वामी के 13वां तिथि है। वैष्णव सिद्धांत में बताया गया है कि वो 13वां तिथि में भी और उनके आविर्भाव तिथि में भी आचार्यगण जो होते हैं वो भक्तों को सीधा आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे हर दिन हम अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं और उनके द्वारा प्रभुपाद और परम गुरु को प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिन दिनों में आविर्भाव उत्तराभाव है उस दिन हम सीधा हम उन आचार्य को हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हमारा रिश्ता है हमारे दादाजी के साथ, तो दादा के पिता के साथ भी है, ऐसे हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये आचार्यगण अपने नित्य लीला में भगवत धाम में भगवान के लीला में सहायता देते हैं और वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं और हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे सकते हैं। हम उनसे ऐसे कृष्ण शक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और खास करके हम रूप गोस्वामी से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपने गुरु के इच्छाओं को हम पूर्ति करें। ऐसे हम बोल सकते हैं कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूँ, गुरु जोर जोर से वो जो इच्छा करता है वो बोल दिया है, वो सुनने के बाद भी मेरे हृदय में वो घुसता नहीं, मेरे हृदय में बैठता नहीं और मैं जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ मनमाने चीज मनोधर्म के अनुसार। लेकिन आप इतने महान हो कि आप चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानकर आपने उनकी इच्छाओं को पूर्ति की, इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं रूप गोस्वामी से आज। और मैं जो विषय के बारे में बोलने वाला था वो अगले क्लास में बोलूंगा। वो क्या था, मैं 5 मिनट में संक्षिप्त रूप में बोलूंगा। ऐसा है कि एक पति पत्नी वो भक्तिमय जीवन में जुड़ रहे हैं, तो पत्नी 2 माला से अभी 4 माला गई, 4 माला से 8 माला तक गई। उनके पति को थोड़ा डर आ गया, तो वो भक्ति में सीरियस बनती जा रही है भक्ति में, लेकिन पति ने बोला कि तुम इतना भक्ति मत करो, तुम थोड़ा धीरे से जाओ भक्ति में। तो कभी कभी परिवार में क्या होता है, अगर पत्नी भक्ति में जल्दी जाती है तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है पति को कि आजकल मैं देखता हूं कि ये कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे से भी, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है पति को। और कभी कभी वो देखता है कि अगर पत्नी बहुत गंभीर बन जाएगी तो दुनियादारी चीजों में रुचि नहीं लेगी, पार्टी में जाने में रुचि नहीं, सिनेमा जाने में रुचि नहीं, घर में ये खाने का पदार्थ भी बहुत सात्विक बन जाते हैं अगर वो भक्ति में सीरियस बन जाती है तो। इसलिए कभी कभी पति लोग वो डरते हैं, इस तरह कभी कभी पति लोग भक्त बन जाते हैं बहुत सीरियस, लेकिन पत्नी पीछे है। और देखते हैं कि पति मंदिर में जाता है, ब्रह्मचारियों को मिलता है बहुत, और कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है। पत्नी सोचे कि ये पति जो है इतना गंभीर बन गया भक्ति में, कभी कभी हो जाती है पति के साथ, देखते कि इतना कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, इतना भक्ति में आगे जा रहा है, ये साधन बन जाए, इस तरह वो भी डरती है। और उसके मन में भी एक विचार आता है कि पति जो है वो कृष्ण से ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे ऊपर उनका उतना प्यार नहीं है जितना वो पहले प्रेम करते थे मेरे से, है इस तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है पत्नी को भी ऐसे। तो इस तरह पति पत्नी जो नवसिख्या अवस्था में है उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है, इस तरह कि अगर कृष्ण आएंगे हमारे जीवन में, कि कभी कभी पति पत्नी डरते भी हैं कि क्या हम ज्यादा अनासक्त हो जाएंगे, क्या शास्त्र इतना बोलते हैं, इतना अनासक्ति के बारे में बोलते हैं, अगर हम अनासक्त हो जाएं तो एक दूसरे से हम प्रेम भी नहीं करेंगे, हम दूर और हम बहुत डिटैच हो जाएंगे। लेकिन रूप गोस्वामी पर क्या बताते हैं, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। उन्होंने ये असली वैराग्य को सिखाया। उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ते समय पति पत्नी दोनों को समझना चाहिए कि कृष्णा इज अवर थर्ड पार्टनर इन अवर लाइफ, यू हैव योर पार्टनर रीच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ आर पार्टनर फॉर रीच अदर, बट कृष्णा इज अवर थर्ड पार्टनर। जब कृष्ण आते हैं पति पत्नी के बीच में, अगर पति पत्नी असली रूप में भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनके आनंद जरूर बढ़ेगा उनके जीवन में, क्योंकि एक दूसरे को जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जब देखेंगे तभी जो मिलने वाला आनंद है वो भौतिक आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है। लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे को एक भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं और एक दूसरे को शोषण करने के लिए प्रयत्न करते हैं और ऐसे भौतिक स्तर में वो भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, क्योंकि बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ऐसा है। लेकिन जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तभी हम समझ सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो असली प्रेम है। माता पिता बच्चे को जब कृष्ण भक्ति देखकर प्रेम करते हैं वो प्रेम असली प्रेम है। जब माता पिता रुचलित, जैसे मैंने एक भक्त को पूछा, पुणे में एक प्रभु जी हैं कृष्ण किशोर प्रभु, शायद नहीं है इधर, वह कृष्ण किशोर प्रभु नाम के, उनके दो बच्चे हैं किशोर और श्रीधर। तो मैं एक दिन पूछ रहा था, आपके दो बच्चे हैं इनको किस तरह आप शिक्षण देना चाहते हो, इनको कैसे आप आगे बढ़ाना चाहते हो? तो वो बताया उन्होंने कि मैं दोनों को भागवत सिखाना चाहता हूं और भागवत में बड़े निपुण बनाना चाहता हूं मैं इनको, ऐसे उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। तो ये माँ बाप की इच्छा होना चाहिए कि बच्चे कृष्ण के महान भक्त बने, और इस तरह पति को इच्छा करना चाहिए कि पत्नी कृष्ण के महान भक्त बने, और पत्नी को इच्छा करना चाहिए कि पति भी कृष्ण के महान भक्त बने। हम दोनों भक्त बने भगवान के, बच्चे भी भक्त बने। जैसे हम गए थे केशवानंद प्रभु, मालूम है हमारे ब्रह्मचार्य है हमारे आश्रम में, उनके माता पिता रहते हैं उधर पार्श्वनाथ में, जब मैं कलकत्ता गया था उधर गया था मैं, तो उनके घर में तीन बच्चे हैं उनके, और तीनों के तीन बच्चे ब्रह्मचारी बन गए हैं। एक पुणे में है केशवानंद प्रभु, उनके भाई चौपाटी मंदिर है, और उनके तीसरा भाई उधर कलकत्ता में, तीन मंदिर में तीन लड़के हैं। मैं क्यों गया उनके घर में, मैंने सोचा था कि माँ बाप रोते रहेंगे सदा, तो उनको शांतवना देने के लिए मैं गया उनके घर में जब हम कलकत्ता गए थे, कि मैंने सोचा कि वो लोग बहुत क्रोधित होंगे, जितना भी कुपित होकर डांटना है मुझे डांटे में मुझे डांटे तो वो डांटने के बाद उनका क्रोध शांत हो जाएगा, ऐसे मैंने सोचा। लेकिन जब मैं घर में गया तभी पता चला उनके माता पिता दोनों कितने महान भक्त हैं। वो माता बोल रही थी, उनके सब फ्रेंड्स को लेके आया उन्होंने 15-20 लोगों को, सब लोग सलामला कर रहे हैं उधर, उन्होंने भी सिखाया, वो खुद भी सलामला करती है वो। तो मैं बता रहा था आपके बेटों ने बहुत बड़ी बात किया है, इस तरह भक्त में जुड़ गए हैं, आपको कुछ चिंता नहीं करना चाहिए वगैरह, और मैं हम सोच रहे थे उनको पुणे में बुलाएंगे तो मंदिर के पास में घर ले सकते हैं वगैरह, ऐसे हम उनको बता रहे थे। तो वो बोल रही थी कि प्रभु जी हमें चिंता क्या है, ये लोग बोल रहे हैं मुझे, मेरे गांव के लोग, तुम्हारे बच्चों को तुमने इस तरह दे दिया भगवान के लिए, तुम्हें बड़ा लॉस हो गया, नुकसान हो गया तुमको, कोई भी तुमको देखने के लिए नहीं है। वो बोल रही है कि मैं मेरे गांव वालों को बोले कि आप लोग इधर क्यों हटक गए हैं, तीन बच्चे गए, हम भी उनके साथ चले ना जाए, क्यों ना चले जाए वैकुंठ, हम भी चले जाएंगे उनके साथ। वो माँ इतना खुश है वो माँ कि उनके तीनों के तीनों बेटे भगवान से में आ गए हैं। तो वो बोली मैं आपको स्वागत कर रही थी हमारे घर में, क्यों, इसलिए नहीं कि आपको कंप्लेंट देने के लिए, हम आपको बुलाए हैं हमारे घर को भी गिफ्ट में देने के लिए आपको, इधर आप इस्कॉन चलाओ, इस्कॉन मंदिर बनाओ इधर, नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो हम क्या करें हमारे प्रॉपर्टी को लेकर, हम अभी दो ही बच्चे हैं पति पत्नी, आप लोग कुछ आइडिया दो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में भी हम चित्र रहना चाहते हैं, ऐसे वो बता रही थी वो। तो उनके पिताजी थे, मैंने बोला उनको प्रभु जी आपके तीन बच्चे ब्रह्मचारी बने हैं, इसका कारण है आपको मालूम है, दो कारण बोला मैंने, ये पार्श्वनाथ में सब सारे जैन लोगों का आचार्य जो है 36 लोगों में 23 लोगों का समाधि उधर है, इसलिए आपके तीनों बच्चे इतने अनासक्त हैं, और साथ साथ वो झारखंड में है, उनका पार्श्वनाथ जो है झारखंड में है, झारखंड में ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे कीर्तन करके नाचा और सब जानवरों को नाचा उन्होंने, वो बहुत पास में ही है उधर से, कुछ ही क्षणों में आप उधर चले जाएंगे झारखंड में, क्योंकि महाप्रभु ने इधर कीर्तन किया है नाचा है, महाप्रभु की पदधूलि आपके घर में भी गिरा होगा, इसलिए आपके तीनों के तीन बजे इतने महान भक्त बन गए, इस तरह बोलकर मैंने शांतावना दी। और मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करिए, ये लोगों के कारण आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि त्रिसप्त पिता पूता वो श्लोक बोला मैंने, बोलकर बोला कि 21 पीढ़ियों के माँ बाप को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, मैंने ऐसे बोला। वो पिताजी बोलने लगे कि मैं मेरे उद्धार के लिए मेरे पुत्रों के ऊपर निर्भर नहीं हो, हम अपना उधर अपने खुद कर लेंगे हम, ऐसे बोल। इसलिए देखिए प्रभु जी, रोज मैं 32 माला करता हूँ, बोला रोज सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। तो मैं जब गया था, मैं उठा 3:30 बजे, वो मेरे पहले उनका 16 माला हो गया था उनका, हमें शर्म आई हमको। तो इसे हम क्या समझते हैं, इस तरह पति पत्नी जो है उनको ऐसे रहना चाहिए। ऐसा रहना, तो ऐसा मत सोचिए कि हम आपके बेटों को मांगने वाले हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने मांगा, प्रभुपाद ने बोला कि अगर 2 बच्चा है तुम्हारे घर में, 1 बच्चा 2 भगवान के प्रचार के लिए, अगर आपके में आप में से किसी की बच्चा ब्रह्मचर्य बन जाता है तो आपको बहुत गर्व करना चाहिए, यू शुड बी वेरी प्राउड। क्योंकि मायापुर में जो बंगाली लोग जो है ना, कोई ब्रह्मचर्य बनेगा मायापुर मंदिर में, वो लोग सोचते हैं कि जैसे अमेरिका में कोई गया ऐसा है, लोग बहुत खुश होते हैं कि ब्रह्मचारी बना है, भगवान का नाम का प्रचार करने वाला है, चैतन्य महाप्रभु जैसे बन गया, ये भी उनके पदचिन्ह में चल रहा है इसे। तो पति पत्नी माँ बाप अगर हम भक्ति में जुड़े रहेंगे, और ये श्लोक जो है अनासक्त विषयान युक्त वैराग्य में हम जुड़ेंगे ना, तभी हम समझ पाएंगे कि असली वैराग्य जो है वो कृष्ण भक्ति में ही है। और शुरुआत में नवस की अवस्था में थोड़ा डर होता है, लेकिन बाद में जब हम प्रगति करते हैं तभी हम समझ जाएंगे कि जो भक्तिमय जीवन जीते हैं पति पत्नी बच्चे, वो ही लोग असली आनंद को अनुभव कर सकते हैं। शिल रूप गोस्वामी पाद की, शिल रूप गोस्वामी पाद तिरुभाव महातिथि की, कंतराज श्रीमद भागवतम की, शिल प्रभु पाद की, गौर भक्त वृंद की, कलयुग पावन हरि हरि नाम संकीर्तन की, हिताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।